ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। हर दिन की तरह आज भी हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का श्लोक नंबर 45 के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। पहले मैं श्लोक उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप सभी मेरे पीछे पीछे दोहराने के लिए प्रयास कीजिए। अध्याय का नाम है सिद्ध पुरुष का आचरण। अध्याय 13 श्लोक संख्या 45। श्लोक इस प्रकार है। स्वात्मवृतं मयेथं ते सुकुप्तम् अपि वर्णितम् व्यपीतं लोकशास्त्राभ्यं भवानी भववत्पर। स्वात्मवृतं मयेथं ते सुगुप्तम् अपि वर्णितम् व्यपीतं लोकशास्त्राभ्यं भवानी भगवत्पर। स्वात्मवृतं मयेथं ते सुगुप्तम् अपि वर्णितम् व्यपीतं लोकशास्त्राभ्यं भवानी भववत्पर। वैष्णव भी बोलेंगे। श्लोक का शब्दानुवाद इस प्रकार है। स्वात्मवृतम आत्म साक्षात करके इतिहास की सूचना मया मेरे द्वारा इत्थम इस प्रकार ते तुम्हें सुगुप्तम अत्यंत गोपनीय अपि यद्यपि वर्णितम बतलाई गई व्यपेतम के बिना लोकशास्त्रभ्यम सामान्य व्यक्ति या सामान्य ग्रंथों का मत। भगवान आप ही निसंदेह भगवत पर भगवान का भलीभांति साक्षात्कार करके श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद अभयचरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रहलाद महाराज, अब निश्चय ही स्वर्ग सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। अपना तो जनमत की परवाह करते हैं न ही तथाकथित शास्त्रों की। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया। तात्पर्य, जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्त है वह तथाकथित जनमत तथा वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता। प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अपने तथाकथित शिक्षकों के झूठे उपदेश का उल्लंघन किया, अपितु वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशों का पालन करते रहे और इस तरह वे सदैव निर्भीक भक्त बने रहे। बुद्धिमान भक्त का यही स्वभाव होता है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा है, यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधसः। जो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है उसे अपने को कृष्ण का नित्य दास मानते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। स्वात्मृतंग मयथंग ते सुगुप्तम अपिवर्णितम व्यपेतंग लोकशास्त्रभ्यां भवानी भगवत परः। हे प्रहलाद महाराज, अब निश्चय ही सर्वप्रसिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। अब न तो जनमत की परवाह करते हैं न ही तथाकथित शास्त्रों की। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया। हरे कृष्ण, मैं सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड के नायक सचराचर जगत का मालिक श्री श्री राधा रास बिहारी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि बार नमन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन प्रभु राम, उनके अर्धांगिनी जनक नंदिनी सीता ठाकुरानी, लक्ष्मण सहित उनके अति प्रिय सेवक हनुमान जी के चरण कमल में मेरा शतकोटि बार नमन करते हुए महावदान्य अवतार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु, जो कि आज से 500 साल पहले इस धराधाम पे आके कृष्ण चैतन्य हरिनाम वाणी प्रचार प्रसार लाभ किए, वही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि नमन करते हुए उनके अति प्रिय भक्त धर्म धुरंधर सारा विश्व में हरिनाम का प्रचार प्रसार लाभ किए श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि बार नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव वैष्णव वैष्णवी को मैं कृपा प्रार्थना कृपा मांगता हूँ। मुझे कुछ शक्ति दीजिए कहने के लिए, क्योंकि ये सेकंड टाइम है भागवत कहना। 2 साल पहले हम असीम कृष्ण प्रभु यहाँ पे बैठाए थे व्यासन में, अब 2 साल के बाद फिर हमको कहने का चांस मिला। ब्रह्म संगीता प्रभु का हम आभार करते हैं, हमको कहने के सुयोग दिए। तो प्रसंग चल रहा है सिद्ध पुरुष का आचरण। आप पिछले क्लास में सुने होंगे प्रहलाद महाराज और ब्राह्मण के बीच बहुत वार्तालाप हुआ है, तो खासकर इसी श्लोक में ब्राह्मण प्रहलाद महाराज का प्रशंसा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज खासकर इस परपट में प्रभुपाद 3 बात के ऊपर गुरुत्व दे रहे हैं। एक है, जो वास्तव में कृष्ण भक्त है वो कोई जनमत या वैदिक दार्शनिक ग्रंथों का परवाह नहीं करता। दूसरा चीज है सदगुरु का पादाश्रय एवं तीसरा चीज है कृष्ण चेतना नाम संकीर्तन के ऊपर। तो भक्ति का अर्थ है, तो पहले हम एक एक करके आलोचना करेंगे। जो भक्त है जनमत के ऊपर परवाह नहीं करता। भक्ति का अर्थ है सेव्य सेवक दर्शन। सेव्य का अर्थ है भगवान कृष्ण, सेवक का अर्थ है भक्त जो कृष्ण का दास। तो जो सेवक होता है उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं भगवान को कैसा संतुष्ट करूं। भक्ति और जीव भक्त, इसमें उसका लक्ष्य एक ही होता है कि मैं किस भगवान कृष्ण को संतुष्ट करूं। एवं भक्ति करने में बहुत सारा बाधा विघ्न आता है, भगवान का परीक्षा आता है, लेकिन भक्त इसमें विचलित नहीं होता। इसमें कहा गया जनमत। बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, कोई निंदा करता है, लेकिन भक्त इसमें विचलित नहीं होता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभत परां। जो वास्तव में आत्म साक्षात का लाभ किया है वो सदा सर्वदा भगवान कृष्ण को 24 आवर्स चिंतन करता रहता है, अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बिठाता रहता है। एकमात्र उद्देश्य उसका केवल भगवान को संतुष्ट करना। वो किसी प्रकार उसका लक्ष्य एक ही रहता है, जैसा हमारा आचार्य लोग जो बतलाए हैं, भगवान व्यासदेव नारद महर्षि जैसा हमको शास्त्र का निर्देश दिए हैं एज इट इज फॉलो करता है। हो सकता है उसको सम्मान मिले, निंदा भी क्यों ना मिले। यही वास्तव में प्रकृत कृष्ण भक्त का लक्षण होता है। दूसरा चीज है, यहां पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, वो अपने गुरु को शिक्षा गुरु संडा मर्क को त्याग कर दिए, पिताजी को त्याग कर दिए, क्योंकि नारद महर्षि को अपने गुरु रूप में ग्रहण किए। शास्त्र में कहा गया है गुरु न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात सृजन न सस्यात जस सौंपति मृत्यु। जो मृत्यु के कवल से हमको रक्षा नहीं करता वो पिता माता नहीं है, वो गुरु गुरुपद वाच्य नहीं है, वो आत्मीय स्वजन नहीं है। क्योंकि हमको जो प्रकृत ज्ञान दे सकता है, प्रकृत रास्ता मार्ग बदला सकता है, वही हमारा प्रकृत गुरु है, प्रकृत पिता माता है। जैसा शास्त्र में लिखा गया है महर्षि धोम और अरुणी का कथा। महर्षि धोम बहुत विद्वान ऋषि थे, तपस्वी थे, उनका एक शिष्य थे अरुणी। एक बार अरुणी को भेजे कि जमीन में जो पानी बहुत आ रहा है वो पानी जैसा नीचे जैसा ना जाए, दूसरे जमीन पे ना जाए, इसके लिए वहां पे मिट्टी देने के लिए उनको भेजिए। लेकिन जितना भी वो हीड़ में मिट्टी दे रहे हैं वो मिट्टी को पानी लेके बाहर ले रहा है, लेकिन वो क्या किए उसमें सो गए, वो हीड़ के ऊपर सो गए। इतना उसमें उनको जिया छोटे छोटे कीट काट रहा है जो पानी में रहता है, जो जोग बोलते हैं उसको वो काट रहा है, फिर भी वो रात भर उसमें ही सोए हैं, क्यों? गुरु का आदेश है। सुबह जब अरुणी महर्षि धोम गए, पहले शिष्य लोगों को पूछे किधर है मेरा शिष्य, तो बोले गुरुदेव आप तो भेजे हैं उनको मिट्टी डालने के लिए, वो गए वहां पे। तो सुबह जब गए देखने के लिए तो ऐसे सोए हैं। तुरंत उनको हाथ पकड़ के उठाए, बेटा तुम इतना मेरे लिए कष्ट किया, नहीं गुरुदेव आप तो बताए कि शिष्य आप मेरे को जो उपदेश दिए उसको तो मेरे पालन करना पड़ेगा, मेरे जो निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए। तो तुरंत उनको बोले वास्तव में तुम मेरा उपयुक्त शिष्य हो, मैं तुमको तुम्हारे हृदय में अनर्गल भगवत का ज्ञान, भागवत ज्ञान, वेद वेदांत का सभी प्रकार ज्ञान तुम्हारे प्रकट होगा। संपूर्ण उनको कृपा से, गुरु का कृपा से शिष्य का मंगल होता है। तो जो स्वरूप सिद्ध आत्मा है उसका एक ही मात्र उद्देश्य होता है वो जगत को कृष्ण भावनामृत शिक्षा देना, भगवत भक्ति शिक्षा देना। ऐसा चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर जब अपने शरीर छोड़ रहे हैं उसके पहले चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं, हे प्रभु हृदय धरिन तुमार कमल चरण, नयने देखिन तुमार चांद बदन, जिहाय उच्चारिन तुमार कृष्ण चैतन्य नाम, एई मत मोर इच्छा छाड़िन प्राण। हे प्रभु मैं इस शरीर छोड़ने से पहले आपका मुखमंडल जैसा दर्शन करके शरीर छोड़ू, मेरा जिह्वा से आपका नाम स्फुरित हो, अनर्गल भवन का नाम जैसा उच्चारण हो, ये मेरे को चाहिए। देखिए आप हरिदास ठाकुर बता रहे, कोई प्रकृत में जैसा सदगुरु को पाना कष्ट है ऐसा सत्शिष्य ही पाना दुर्लभ है। जैसा भक्ति सिद्धांश ठाकुर एक बार उनके सभी शिष्यों को बुलाकर बोले, वास्तव में मेरा कोई भी प्रभुपाद आने से पहले कोई भी मेरा उपयुक्त शिष्य नहीं है। भक्ति सिद्धांश ठाकुर बता रहे तो हमको वास्तव में जो हमको आचार्य बताए हैं उसका एजीज हमारे जीवन में उतारना चाहिए, नहीं तो चाणक्य पंडित जैसा कहते हैं, जैसांग श्रीमद सुधा सुधपत कमले नास्ति भक्त नारायणांग, जैसांग आभिर कन्या प्रिय गुण कथने नानु रक्त रसज्ञा, जैसांग श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा साधुर नैव कर्णो धिक तांधिक तांधिके तान कथते सतत कीर्तनस्थ मृदंग। चाणक्य पंडित कहते हैं मेरा जीवन धिक्कार है, किसका जीवन धिक्कार है, जैसांग श्रीमद सुधा सुधपत कमले नास्ति भक्त नारायणांग, जो यशोदा सुत भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं श्रवण कर रहा है, ये संग श्रीमंत सुधा सुत पद कमले नास्तिक भक्ति नारायण, ये संग आभिर कन्या गुण कथन है नानु रक्त रसज्ञा, जो गोपियों का ब्रजवासी का कथा श्रवण नहीं कर रहा है, ये संग श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा साधुर नैव कर्णो धिक तांधिक तांधिके तान कथते सतं कीर्तनस्थ मृदंग। तो मृदंग का ताल क्या बोलता है, उसका जीवन धिक्कार है, धिक्कार है। तो यहाँ पे तो तीन चीज का बात बताया गया है, एक तो जनमत, दूसरा है सदगुरु का पादाश्रय, एवं तीसरे पर बल क्या दिया गया है, नाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं जो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है उसे अपने को कृष्ण का नित्य दास मानते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, 24 आवर्स भगवान कृष्ण को स्मरण करना, चिंतन करना। चैतन्य चरितामृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नविदा भक्ति पूर्ण नाम हैते हय, दीक्षा पुरचर्या विधि अपेक्षा न करे, जिहा स्पर्श से अचांडाले सवारे उद्धार। कोई पात्र पात्र को विचार नहीं करता भगवान का नाम, इसका जिह्वा में एक बार उच्चारण हो जाता है तो उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो जिसका जीवन में एक बार भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है वो मेरा भक्त तुम जानो। जैसा आर्य कथा है चैतन्य चरितामृत में, सुबुद्धि रायर हुसैन शाह की कथा, सुबुद्धि राय बंग का नवाब थे, हुसैन शाह उनका मंत्री थे, लेकिन एक बार हुसैन शाह को एक कुप खनन के लिए भेज दिए सुबुद्धि राय, लेकिन उसमें थोड़ा अवहेला होने के कारण उनको क्या किए चाबुक में प्रहार किए, लेकिन कुछ समय के बाद वहां का जो केंद्र मंत्री उनको क्या किए, उनको हुसैन शाह को बंग का राजा बना दिए, एवं सुबुद्धि राय उनके मंत्री हो गए। तो जब एक बार उनके पत्नी देख रहे हैं कि उनके पति के पीठ में एक चाबू का प्रहार चिन्ह है, तो तुरंत बोले इसको ये तुमको कौन पिटाई किया। तो सुबुद्धि राय हुसैन शाह के पत्नी बोल रहे हैं अभी जो हमारे मंत्री हैं वो एक दिन नवाब राजा थे, मैं उनका मंत्री था और मैं उनका सेवा में अवहेला करने के वजह से इसके लिए मुझे प्रहार किया, वही चिन्ह है। तो उनका रानी क्या बोले, उनको तुरंत हिंदू धर्म से उनको विच्छेद कर दो, उनको प्राणदंड दो पहले। ले नहीं, वो मेरे गुरु है, मैं उसको कैसा प्राणदंड दे सकूं, अगर ये बात नहीं है तो तुम कम से कम उसको जाति से विमुख कर दो। तो उस समय रिवाज था कि कोई अगर मुस्लिम हिंदू के शरीर में पानी अगर झूठा पानी छिटक देगा तो उसका जात चला जाता था। तो तुरंत ऐसा ही किए वो, उनका सुबुद्धि राय उनका जात चला गया। लेकिन इसका जो प्रायश्चित के लिए बहुत सारे संत के पास गए, इसको कैसा मैं दूर हो सके, तो लास्ट में महाप्रभु को मिले वाराणसी में। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं यहां होते जहां वृंदावन निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन, तुम वृंदावन जाओ वहां पे हरिनाम का संकीर्तन करो। फिर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं एक नावा से तुम्हार पाप मोचन और नाम लहते कृष्ण, एक नाम भा से तुम्हार पाप जावे और लवते कृष्ण चरण पाईवे। फिर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं और कृष्ण नाम लहते कृष्ण स्थान स्थिति महापात कर यही प्रायश्चित है। केवल चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जो अखंड भवन का नाम संकीर्तन करता है किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर कृष्ण कर्णामृत स्तोत्र में कहा गया है सर्व मंगल मांगल्य मायुष्यं व्याधि नाशनम भुक्ति मुक्ति पदंग दिव्यंग वासुदेव संकीर्तनम। भगवान का नाम कीर्तन से आयुष वृद्धि होता है, व्याधि चला जाता है, रोग से व्यक्ति मुक्त हो जाता है भगवान का नाम संकीर्तन से। फिर कहा गया है गोकुटि दान ग्रहण खगस्य गंगायुते कल्पायु सवास जज्ञाय तो मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तनम नसंग सतान से। जो गोविंद का कीर्तन करता है उसका आयुष, गोकुटि दान ग्रहण खगस्य करोड़ गावी का दान का फल मिल जाता है। यज्ञ आए तो मेरु सुवर्ण दानम, मेरु जैसा सुवर्ण दान करने से ऐसा फल नहीं मिलता, भगवान का नाम उच्चारण से ऐसा फल मिलता है। गंगा आए तो मेरु सुवर्ण दान गोविंद कीर्तनम नसंग सतान से, गोविंद कीर्तन का ये फल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमारे आचार्य लोग जो बताए हैं उसको ऐसी रीति से अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको महत कृपा नहीं होगा तब तक हमारा वैष्णव के प्रति, जब तक हमारे नाम के प्रति रुचि श्रद्धा विश्वास नहीं बढ़ सकता। कभी कभी हम कुछ पावर में कुछ पदवी में मदमत्त हो जाते हैं एवं अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, जिस उद्देश्य से हमें शरीर मिला है उसको भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अब्रह्म भूनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुन, जब तक कोई अगर शुद्ध भक्त नहीं होता कभी उसका जीवन में स्वीकृति नहीं, वो कभी भी उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। जैसा भागवत में कहा गया है षष्ठ स्कंद में, जब देवराज इंद्र वृत्रासुर में युद्ध हो रहा है तो देवराज इंद्र वृत्रासुर को जब वध कर दिए तो इसका ब्राह्मण का अभिशाप लग गया। इसके ख्यालन के लिए वो क्या किए, नदी पानी में वो तपस्या किए। उसी समय देवराज इंद्र का पदवी खाली पड़ गया, उसी समय کیا کہ راجا نحوس ان کو سنگھاسن پر بیٹھا گیا, لیکن راجا نحوس اپنے پدوی میں اتنا گربا ہو گئے کہ وہ اندر کے پتنی سچی دیوی کے اوپر ان کا درشٹی ہوا. بعد میں سچی دیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے وہ کیا کیے, ان کو بلائے, لیکن یہ بات سچی دیوی کیا بولے, جا کے راجا اگست منی کو بتائے. اگست منی بولے ایک ہی تم کو ان کو بتاؤ کہ جب یہ گھر رشی منی کے دوارا پالنکی میں آنا چاہیے مہارانی چتر کے, تم نحوس مہاراج کیا بتائے, اگست منی بتائے کہ تم بتا دو راجا کو کہ میں آؤں گا, لیکن ایک ہی کنڈیشن ہے, کیا رشی لوگ اس کو ڈھو کے آئیں گے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا. تو راجا نحوس اتنا مدمت تک آماندہ ہو گئے تھے کہ اس کو سویکار کر دی. بعد میں جب رشی منی ان کو پالی کے میں ساتھ سپت رشی لو کے آ رہے تھے تو ترنت وہ کیا بول رہے ہیں, سرپا سرپا سرپا, میں نے شیگر مجرے کو لے کے جاؤ. لیکن اگست منی کیا بولے, گسیا ہو کے اتارو نیچے, اس کو اتارو. اس کو ترنت ابھیشاپ دے دیا, تم سرپا ہو جاؤ. راجا نحوس ان کا سرپ جو نیل ہو گیا کیونکہ مہت وشنو کا پاس اپرادھ کر دیا. اس لیے کہا گیا ہے ہم کو اگر بھکتی میں پروگرس کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو فرسٹ ہم کو دیکھنا چاہیے کوئی وشنو کے چرن کا کوئی اپرادھ نہ ہو. جیسا بھکتی ونود ٹھاکر بتاتے ہیں, کبھی ہبے بولا سدھی نامار اپرادھ گچی شدھ نام روچی کرپا بلے ہبے ہردے سنچار. ہے پربھو کبے کب آپ کے نام پرتی میرا روچی ہوگا, کبے ہبے بولو سی دن امار, سی دن کب آئے گا جو کہ سبھی اپرادھ ہم میرے سے چھوٹ جائے گا. شدھ نام ہے روچی, آپ کے نام پرتی میرا پریم شردھا بڑھے گا. شدھ نام ہے روچی کرپا بلے ہبے ہردے سنچار. नरोत्तम दास ठाकुर एक वैष्णव भजन में कहते हैं, कबे कृष्ण धन पावो हियारे माझारे थावो जुड़ा वे तापित प्राण. हे प्रभु मैं कब मैं कृष्ण रूपी धन पाऊंगा, मेरे हृदय का कलमस कब जाएगा. कबे कृष्ण धन पावो हियारे माझारे थावो जुड़ा वे तापित प्राण. ये जो कबे जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे भक्त समाज में भक्त लोग कभी कभी हराश हो जाते हैं, नाम कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है. लेकिन जो कबे जो शब्द है इसका महत्व बहुत है. कबे हबे कब हो वही दिन आएगा. जैसा रामायण में हम देखते हैं शबरी मुनि चौदह साल से लेकर 60 साल तक उनको अपेक्षा किए, किसको, प्रभु राम को. उनका मातंग मुनि बता के गए थे कि प्रभु राम आएंगे तो उनको सेवा करना, कितना निष्ठा था उनका गुरु के आदेश के प्रति. यही शिष्य को हमें मनोभाव होना चाहिए, क्योंकि हम उपयुक्त प्रकृत रास्ता में हैं, उपयुक्त गुरु का पादाश्रय किए हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो इसमें और क्या बड़ा चीज हो सकता है. इसलिए जो भक्त होता है वो बाह्य समाज का कोई मान सम्मान करे, कोई निंदा करे, इसको अपेक्षा नहीं करता. जैसा एक बार मिथिला नरेश महाराज जनक के पास अष्टवक्र मुनि पदार्पण किए. अष्टवक्र मुनि 8 जगह में उनका टेढ़ा है. जब राजा के महल प्रवेश किए तो जितना सर वहां पे विद्वान ब्राह्मण थे वो सब हंसने लगे, देखो कैसा अष्टव 8 तरह उनसे बंका है, कैसा ब्राह्मण है ये. लेकिन जैसा हंस रहे ये भी हंसने लगे, इतना जोर से हंस रहे हैं दोनों में, ब्राह्मण भी हंस रहे हैं और लोग भी हंस रहे हैं. तो बाद में जनक महाराज क्या किए, अपने सिंहासन से उतर के उनको लेके उनको उनके पास गए, उनको हाथ पकड़ के उनको सिंहासन में बैठाए, उनको प्रणाम किए, उनका पाद धोता किए. बोले मुनिवर मेरा सेवा में कुछ गलती हो गया क्या, तो तो ब्राह्मण अष्टावक्र मुनि हंस रहे हैं, फिर आप क्यों इतना इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं प्रभु? तो अष्टावक्र मुनि बोल रहे हैं, तो वहां पे एक ब्राह्मण खड़ा हो गया, बोले देखो देखो कैसा ब्राह्मण है, आए हैं महाराज के जनक महाराज के आश्रम पे, जनक महाराज के राज्य पे, ये कैसा ब्राह्मण है दिखने में देखो कैसा। तो उनको देख के ये भी हंस रहे हैं। तो मिथिला नरेश महाराज जनक पूछ रहे हैं, अब क्यों इतना हंस रहे ब्राह्मण? तो अष्टावक्र मुनि बोल रहे हैं, महाराज मैं सुना था कि आपके साम्राज्य में आपके राज्य में ये सभा में बहुत विद्वान बड़े बड़े विद्वान आएंगे आए होंगे, मैं उनसे कुछ शिक्षा लाभ करूं ज्ञान लाभ करूं, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पे सब चमार बैठे हैं। तो अष्टावक्र मुनि बात सुन के दशरथ महाराज जनक महाराज आश्चर्य हो गए, महाराज इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, अब इनके सामने इन लोग कुछ अब चमार बोल रहे हैं? तो अष्टावक्र मुनि बोल रहे हैं, हाँ चमार ही तो है, जो बाह्य चमड़े को देख के बाह्य हड्डी को देख के बाह्य रूप को देख के समझता है ये कितना बड़े ज्ञानी है कि नहीं विद्वान है कि नहीं, ये चमारी है, आपके सभी यहाँ पे सब चमारी बैठे। तो इस सुन के सभी विद्वान लोग नीचे सिर कर दिए। तो कहने का मतलब बाह्य दृष्टि से हम कोई भक्त वैष्णव को पहचान नहीं सकते, वैष्णव का व्यवहार आचरण से पता चल जाता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि सदा सर्वदा गुरु का इंस्ट्रक्शन में हमारे जीवन बिताना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज को ब्राह्मण अवधूत ब्राह्मण बता रहे हैं, अब निश्चय स्वरूप सिद्ध आत्मा तथा भगवत भक्त है, अपना तो जनमत की परवाह करते हैं नहीं तथागत शास्त्रों की, इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास सुनाया। माता देवोवती कपिल देव को बता रहे हैं, ओहो बच सुभज अति गरियान जत जिवाग्रे बर्तते नाम दुभ्यम ते पुष तपस्ते जीव सुसुनार्ज्या ब्रह्मा चुर नाम गुणंती जेते। इसका जिह्वा में भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है और सभी प्रकार तपस्या सभी प्रकार वेद अध्ययन कर चुका है, उसका कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो विद्वान है उसको हो सकता है वो देखने में कोई बहुत ऐश्वर्य भी सामग्री भी योजना क्यों ना करे, लेकिन हम नहीं जान सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि अरे ये बहुत धनी है बहुत संपत्ति के में रह रहा है इसके क्या भगवान को भक्ति करेगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा रामायण में कथा आता है महाराज दशरथ का, एक बार महाराज दशरथ सोने का पालिंग में सोए हैं, वो देख रहे हैं एक अजीब सा सपना देखे, क्या उस भूखा प्यासा एक जंगल में भटक रहे हैं पानी के लिए, जंगल में भटक रहे हैं, पहले शिकार करने के लिए गए लेकिन उनके बीच में बहुत प्यास लगा, लेकिन प्यास के वजह से वो पानी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते कहां भी पानी नहीं मिला, बाद में क्या करेंगे। देखे दूर से एक बुढ़िया का कुटिया थी, वो गए, माँ मैं बहुत दूर से आया हूं मुझे कुछ प्यास लगे कुछ पानी दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा मैं आपको क्यों नहीं देऊं, तो उनको पानी दिए, बाद में उनको कुछ जो भगवान को जो भोग लगा भगवान का भक्त थी कि खीर भोग दिए उनको। जब खाने के लिए मुंह हाथ बढ़ा रहे तो तुरंत एक जंगल का एक विराट भयंकर शंड आया, वो पैर के ऊपर वो पत्ता के ऊपर अपने पैर रख दिया। तो दशरथ महाराज पछाओ बोल के आश्चर्य हो गए। तो ये सब तो तुरंत वहां पे जो सिपाही लोग थे वो क्या हुआ महाराज क्या हुआ उनके पास आ रहे, तो बोले नहीं मैं एक अजीब सा सपना देखा, वास्तव में सत्य क्या है, मैं राजा हूं ये सत्य है ना, भूखा प्यासा जो भटक रहा हूं ये सत्य है,
तो उनको इसका उत्तर कौन दे सकता है? तो एक सभा बुलाए, वहां पे विद्वान लोग को बुलाए, सभी बोले एकमात्र ऋषि हैं अष्टवक्र मुनि, वो अगर आएंगे जो बोलेंगे वही सही है। तो तुरंत उनको बुलाया गया, वो बोले महाराज मैं बताऊंगा लेकिन इसके बदले आप मेरे को कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा। क्या दक्षिणा दूं? आपका जो प्रिय चीज है वो मेरे को दीजिए। क्या मेरा प्रिय है? इस राज्य ये ले लीजिए। नहीं, ये आपका प्रिय नहीं है, ये आपका पूर्वज जो आपका, ये खुद का आपका नहीं है, आपका पूर्वज लोग का कमाई का चीज है, आपका जो खुद का चीज है वो मेरे को दीजिए। तो मैं क्या दूं? ये धन संपत्ति दे दूं आपको, मेरा ऐश्वर्य जितना मेरे पास संपत्ति है ना, ये भी आपका चीज नहीं है, आपके पूर्वज लोग कमा के ये संपत्ति रखे हैं, तो मैं क्या दे दूं आप सब। तो बाद में दशरथ महाराज क्या कि अपने अपने को समर्पण कर दिए। तो इसका परीक्षा होना चाहिए सही है ना गलत है। तो एक बार क्या किया, अष्टवक्र मुनि गंगा नदी के तट पे भागवत कथा कह रहे, ये श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उस समय अचानक उनके राजमहल से एक सिपाही आया एक पेपर लेके कि उसमें लिखा आ गया था क्या, उनका राजमहल जल गया एवं उनका लड़का गुजर गया। लेकिन पढ़ते ही वो क्या किया, कागज टुकड़ा को ऐसा फेंक दिए। बाद में जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे महाराज आपके राजमहल में आग लग गया है। तो दशरथ महाराज क्या किए, वो श्रवण कर रहे हैं। बाद में जो वहां पे दूसरे जो ऋषि मुनि श्रवण कर रहे थे वो सोच रहे हैं कि बाजू में तो हमारा घर है, अगर आग लग गया तो शायद उन हमारे कुटिया में भी चला जाएगा, इसलिए ये कथा छोड़ के सब अपने घर बचाने के लिए चले गए। लेकिन दशरथ महाराज ध्यान पूर्वक भगवान का कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बाद में वो परीक्षा में पास हो गए, ना उनका घर चला है ना उनका लड़का गुजर गया। देखिए श्रवण का महत्व तो कितना है, श्रुतांग शोकदांग कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदंतस्य अभद्राणी विद्रोह श्रुतान। जो अनन्य रूप से श्रवण करता है कृष्ण का कथा, उसका हृदय सब अभद्र चला जाता है। श्रीमद भागवत की शिक्षा है यज्ञ संकीर्तन प्राजयंती सुमेधस। तो संकीर्तन यज्ञ कौन कर सकता है? जो वास्तव में बुद्धिमान है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन? भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। जो प्रकृति में भाग्यवान जीव है वही गुरु कृष्ण का कृपा लाभ कर सकता है। इसलिए जो भक्ति है उसमें एकमात्र उद्देश्य है सिव्य शिव का दर्शन में कैसा मेरे गुरु का निर्देश पालन करके भगवान कृष्ण को संतुष्ट करूंगा, इसका उद्देश्य एक ही वही रहता है। उसमें से कोई बाधा आए, कोई उपहास करे, कोई निंदा करे, इसमें भक्त उसमें कुछ विचलित नहीं होता। ये प्रकृति में वास्तविक स्वरूप सिद्ध आत्मा का लक्षण है। यहाँ प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं, जनमत तथा दार्शनिक ग्रंथों की परवाह नहीं करता। प्रहलाद ऐसे ही एक भक्त थे जिन्होंने अपने पिता तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए नारद मुनि के आदेशों का पालन करते रहे, उल्लंघन कर दिया अपने पिता के बाद। जैसा बामनदेव जब आए बलि महाराज के पास, बलि महाराज शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं ये स्वयं भगवान आए हैं, तुम्हारे तीन पग या दो पग में तुम्हारा साम्राज्य छीन लेंगे, तीसरा रखने का स्थान ही नहीं रहेगा। तो बलि महाराज क्या थे, उनका पितामह प्रहलाद महाराज का नाती थे, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि महाराज, इसलिए उनके भगवान के प्रति भक्ति था। जानते थे ठीक है भगवान अगर मेरे पास आए तो कितने मैं भाग्यवान हूं, भगवान आप उनका संपत्ति वो लेंगे, इसमें मेरा क्या। देखिए गुरु को त्याग कर दिए, जो वास्तव में कृष्ण का ज्ञान नहीं दे सकता वो गुरु गुरु पदवाच्य नहीं है। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि सदा सर्वदा भगवान का नाम के ऊपर आश्रय लेके, सदगुरु पादाश्रय लेके अपने जीवन को बिताना चाहिए। फिर कहा गया है अस्
श्रीमद भागवतम षष्ठ स्कंद द्वितीय अध्याय 29 नंबर श्लोक में कहा गया है, यथा गदं बीर्यतमन उपयुक्त यदृच्छया अजानतो अप्यात्म गुणं कुर्ज्यान मंत्रोपि उदाहृत। जैसा मेडिसिन को उसका क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीज में मेडिसिन बना है उसको नहीं जानते हुए भी हम अगर मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन का काम करता है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का नाम अपने जिह्वा से उच्चारण भी कर लेते हैं इसका फल क्या है, इसको क्या मिलता है उसका न जानते हुए भी भगवान का नाम अगर उच्चारण करेंगे तो हमको मेडिसिन जैसा काम करता है। यही वास्तव में सार है, कितना सरल हमको। इसलिए भक्ति का अर्थ है क्या, प्रभुपाद जी महाराज एक जगह में बताते हैं भगवान एक सबको एक स्पेशल क्वालिटी दिए हैं, उसको भगवान के सेवा में लगाना ही भक्ति है। भगवान के सेवा में लगाना ही भक्ति है। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे, लॉस एंजल्स में एक प्रभुपाद डिसिपल है, वो 40 ईयर्स हो गया बर्तन साफ कर रहे हैं, 40 साल हो गया एक ही सेवा डिटी का बर्तन साफ करना। देखिए कितना निष्ठा है भगवान के सेवा प्रति, वो जानते हैं गुरुदेव प्रभुपाद बोले हैं यही सत्य है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही कृष्ण चेतना ग्रहण करता है। फिर भागवत में फिर एक प्रसिद्ध श्लोक आया है, उसमें कहा गया है, अनन्न चेता जो मांग स्मरति नित्य सह तस्यां सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं जानना चाहिए। अनन्य चेता का अर्थ है कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। जो भक्त होता है एकमात्र रहता है कृष्ण चेतना, कृष्ण के प्रति कैसा मैं कृष्ण को संतुष्ट करूं, ये एकमात्र लक्ष्य होता है। बहुत सरल है एवं बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं पदाश्रितं ज पद पल्लवं प्लवं महत् पदं पुण्य सोमुरारी भवाम्बुधिर्यस्य परं पदं 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 यत् पिबदान तेषां। पदाश्रितं ज पद पल्लवं प्लवं महत् पदं पुण्य सोमुरारी, अर्थात जो महत् पद का आश्रय लेता है, महत् वैष्णव का आश्रय देके भजन करता है, उसके लिए कृष्ण चेतना क्या है, गाय का खुरा का चिन्ह के बराबर, उसको पार करना के बराबर हो जाता है। जैसा वर्षा के दिन में बछड़े के खुर के चिन्ह से छोटा गड्ढा हो जाता है, वहां पे पानी कितना पानी रहता है, बहुत कम पानी, उसको लांग करना कितना सहज है। उसी प्रकार है जो आचार्य के अनुसार कृष्ण चेतना ग्रहण करता है। तो बहुत सारे देखिए आप महाराष्ट्र गुजरात में देखेंगे, बहुत के घर में राधा कृष्ण का विग्रह है, फोटो है, देते ही मैंने हम गए भगवान के बड़े बड़े विग्रह, बहुत बड़ा बड़ा साइज का विग्रह भगवान का रखे हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उपयुक्त साधु का अनुगत्य में भजन नहीं करते। जैसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक कथा कहते हैं, आप तो जानते होंगे, उस एक बार गंगा नदी के उस तरफ ब्रजयात्री जा रहे थे, बर जो तो बीच में क्या हुआ, नदी पड़ता है तो वहां पे बहुत सारे यात्री बैठे, एवं दूसरे दिन सुबह वहां पे शादी का मुहूर्त का समय था, लेकिन उसको नाविक को क्या बोले, तुम जितना शीघ्र हो सके रात भर चला के वहां पे पहुंचा दो सुबह तक। लेकिन आपने जितना ताकत था मेहनत किया करके, लेकिन सुबह देखा तो क्या हुआ, नौका वहां पे ही है, थोड़ा सा एक इंच भी आगे गया ही नहीं। तो देखो क्या हुआ, तो सचमुच क्या हुआ, उसका जो नंगर है उसको उठाया नहीं, नंगर नहीं उठाया गया, केवल नौका को ऐसा आहुला मार रहे। तो क्या हुआ, जैसा को वो बोले, हम इतना आपको 100 रुपया, आपको 500 रुपया दिए कि जितना शीघ्र हमको पहुंचा दो, लेकिन आप वहां पे क्या हुआ क्या, देखो देखते हैं सचमुच ऐसा है, नंगर ही पड़ा है, निकाले नहीं। तो ये नंगर क्या है, नंगर ये है हमारा जो अभिमान है,
गर्भ है, दंभ है, माश्चर्य जदा है, इसको जब तक हम नहीं हटाएंगे ना, तब तक हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रिय, कृष्ण का प्रिय पात्र नहीं हो सकते। हो सकता हम बहुत बड़ा गायक क्यों ना हो, बहुत बड़ा प्रीचर क्यों ना हो, लेकिन ये सूक्ष्म जो प्रतिष्ठा है ये हमको कभी भी ढकेल सकता है। इसलिए हमको एज इट इज, जैसा प्रभुपाद जी महाराज इतना प्रचार किए, फिर प्रभुपाद जी बोले मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूं, अभी सेवक बनने के लिए प्रयास कर रहा हूं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो हमारा कौन सा स्थिति है बताइए। इसलिए हमको कोई भी वैष्णव के पास कोई अपराध ना करते हुए गुरु पादाश्रय करके गुरु का इंस्ट्रक्शन में एज इट इज जैसा हमको बताया है उस हिसाब से हमको भजन करेंगे तो जरूर गुरु का कृपा मिलेगा, भगवान कृष्ण का कृपा मिलेगा, और इसी जन्म हमारा अंतिम जन्म हो जाएगा एवं हमारा जो लक्ष्य है भगवान कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का प्रेम, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय तहत एक न विश्राम लभिया छाड़िनु भवे भय। जहाँ पे शोक नहीं है, जहाँ पे भय नहीं है, जहाँ पे मृत्यु नहीं है, वो स्थान हमको मिलेगा। इसलिए आप सभी को अनुरोध है, आप बहुत भाग्यवान है क्योंकि आप उपयुक्त संस्था में हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अंतिम सांस तक भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, गुरु पादाश्रय को, गुरु आचार्य को संतुष्ट करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना चाहिए। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो विशेषकर यहाँ पे प्रहलाद महाराज को वो सिद्ध पुरुष बता रहे हैं कि मैंने आप वास्तव में वो प्रकृत पात्र हैं, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको ये ज्ञान दिए, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान किए एवं प्रहलाद महाराज को सम्मान प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज है हमको राधा रास बिहारी जी के मंदिर में रह के भगवान का सेवा करके अपने जीवन को लगा देना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा रास भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की जय, गोनिदाई भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निदाई गोपानंदी हरे हरि बोल। किसी का कुछ प्रश्न है अभी जो मैं बताया उसमें से अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, निदाय गौरशितानंदी हरे कृष्ण, वंशा कल दुर्वेश कृपा सिंधु पावन भ्यो वैष्णव भ्यो अनंत कुटी वैष्णव की जय।